ओम शांति। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को चुन चुन के अपना बनाया। बाबा कहते मीठे बच्चे सदैव ये नशा रखो कि हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो जो भी बाबा के बच्चे हैं वो सब विशेष बच्चे हैं, भगवान ने पसंद किया है हमें। हमारा एक गीत भी है ना, हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। सिर्फ उसको भाए नहीं पर उसके काम में भी आ गए। ऐसा होता है घर में कोई चीज पड़ी होती है, समझो टेबल ही है, हमारे काम में नहीं आता है, कोने में पड़ा है, और कोई आकर के अगर कहता है अड़ोसी पड़ोसी कि ये टेबल मेरे को दे दो मेरे काम में आएगा, तो हम कितने खुश होते, भाई ले जा मेरे तो काम का नहीं है तेरे काम में तो आ गए। तो हम लोगों का जीवन ऐसा था निकम्मा। बाबा ने हमें अपना बना करके अपने काम में लगा दिया, बिजी कर दिया। तो इसीलिए सदैव ये ईश्वरीय नशा और खुशी रहे कि हम बाबा के काम के बच्चे हैं। सिर्फ नाम के बच्चे नहीं, काम के बच्चे है ना, सब काम के बच्चे। क्योंकि ज्यादा प्यार उसके ऊपर ही होता है जो ज्यादा ज्यादा काम करते हैं। हमेशा पहाका होता है, सिंधी में पहाका है, जो चुल पर है सो दिल पर है। जो घर में जो बहू बहुत काम करती है ना, चुल हमेशा खाना पीना पकाती है, सबको कुछ करती है, सब उसको प्यार करते हैं। जो सिर्फ बैठी रहेगी गप्पे मारेगी उसको कौन प्यार करे। तो यहाँ भी जो बाबा की सेवाओं में तत्पर रहते हैं तो बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, दिल तख्त पर बिठाते हैं और ताऊजी तख्त पर बिठाते हैं। भक्ति मार्ग में हम सब भगवान के लिए गायन करते थे तो हमें वो माता पिता बंधु सखा सर्व संबंध तेरे साथ हैं, क्योंकि भगवान ये सर्व संबंधों की सैकरीन। वो सिर्फ गाते थे परंतु भगवान के साथ संबंध क्या होते थे इसका ज्ञान नहीं था, इसका अनुभव नहीं था कि भगवान कैसे संबंध में आ सकता है जो निराकार है अजन्मा है। ये तो जब भी वो सृष्टि पर आता है उस समय पर आकर के हम बच्चों को इसकी अनुभूति कराता कि मैं कैसे सर्व संबंधों की सैकरीन, तुम्हारे सर्व संबंध मेरे साथ है। और जब सब संबंध मेरे साथ जोड़ लेते हैं तो आप इस सब तरफ से बुद्धि का योग टूट जाता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने के लिए सर्व संबंधों की अनुभूति अत्यंत आवश्यक। अगर किसी भी संबंध में हमारी बुद्धि जाती है, हम नष्टो मोहा नहीं बनते हैं तो स्मृति स्वरूप भी नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा ने पहले पहले आके हम सब बच्चों को पुरानी दुनिया से मरना सिखाया। कोई आपसे पूछे ना कहाँ जाते हो तो उनको बताओ हम मरने के लिए जा रहे, बोलेंगे पता नहीं इनको क्या हो गया क्यों मरने को जाते। क्योंकि आजकल लोग तंग होके मरने को जाते हैं ना, हम तो यहाँ रोज मरने के लिए आते हैं। बाबा हम बच्चों को मरना सिखाता है, देह और देह के संबंधों से मरना सिखाता है, न्यारा बनना सिखाता है। कहा जाता है आप मरे मर गई दुनिया, जो खुद मर गया उसके लिए तो सारी दुनिया मरी पड़ी। शास्त्रों में और गीता में बताते हैं अर्जुन काके को मार चाचे को मार, अरे उनको मारने की क्या जरूरत है, तू ही मर जाना, इतनों को मारने की क्या आवश्यकता। तो वास्तव में बाबा ने हम बच्चों को बताया कि और किसी को नहीं मारो, खुद को मारो, अर्थात ही मरजीवा बन जाओ, बाबा की गोदी का बच्चा बन जाओ। माया से बचने का बड़ा सरल तरीका है बाप की गोदी का बच्चा बनना। जो बाबा की गोदी के बच्चे बन जाते हैं वो माया से सदा के लिए बच जाते, क्योंकि बच्चे का ख्याल तो माँ खुद ही रखती है ना, उसको नहीं रखना पड़ता। और जहाँ बाप है वहां पर माया की ताकत नहीं आने की, वो नजदीक भी नहीं आ सकती है, हमारा नाम भी नहीं ले सकती है। तो बाबा के साथ हमारे जो सर्व संबंध है उसकी अनुभूति करने के लिए हमारे को सर्व संबंध निभाने पड़ेगा। जब तक हम संबंधों को निभाते नहीं हैं तो उसका अनुभव नहीं होता है। ऐसा ही सिर्फ आप संबंध जोड़ दो, ऐसा ही सिर्फ गायन कर डालो, उससे कुछ नहीं होगा। जो भी वैसे तो सर्व संबंध है, परंतु सर्व संबंधों से भी जो विशेष संबंध है, जिन संबंधों के द्वारा हमें अनेकानेक प्राप्तियां होती हैं, वो सर्व संबंध हमको निभाने आने चाहिए। जब तक हम उसके साथ निभाते नहीं हैं, ईश्वर के साथ प्यार बहुत करते हैं परंतु निभाते कोई कोई, वैसा समाज में भी होता है ना, कोई कोई ऐसे होते हैं जो सर्व के साथ निभ के चलते हैं। निभ के चलते माना मिल के चलते, सर्व को खुश करते हैं। यहाँ तो भगवान को खुश करने की बात है, जो कभी नाराज ही नहीं होता है, पर उसको भी खुश करना होता है। तो उसके साथ जो हमारे सर्व संबंध है, सबसे पहला हमारा जो संबंध है वो माता पिता है हमारा और हम उसके बच्चे। तो वो हमारा माता पिता है क्योंकि निराकार ने साकार बाप के द्वारा सर्व संबंधों की हम बच्चों को अनुभूति कराई। उसके जो भी गुण हैं, उसकी जो भी शक्तियां हैं, उसके जो भी संबंध है, वो सारे निराकार के परम धाम में बैठ के किसी ने अनुभव नहीं किए, परंतु साकार में आने के बाद ही उसने अनुभव कराए और हम बच्चे उनके अनुभव किए कि कैसे हमारे साथ और हमारे उसके साथ रिश्ते। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा, जबकि हमारा बाबा है, बाबा हमारी माँ भी है, हम उसके बच्चे हैं, इसीलिए तो हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। श्री बाबा हमारा बाप है तो ब्रह्मा हमारी माँ है ना, ब्रह्मा माँ, वो तो माँ उसमें आप ही आ गया माँ। तो बाबा की गोदी का जब हम बच्चा बनते हैं, बच्चे का कर्तव्य क्या होता है? बाप वर्षा किसको देता है? वो हमारा बाप है। ये अनुभव हमें कभी आता है? जब हम उसकी परवरिश लेते हैं। देखो, छोटा बच्चा जन्म लेता, उसको भले सब बोलेंगे बाबा बाबा बोल, बोलता रहेगा, पर जितना जितना वो माता पिता की परवरिश लेता जाता है, उतना उतना उसको पक्का होता जाता है कि यही मेरा माता पिता है। तब वो अच्छी तरह से उसको पहचानता है। तो हम भी जितना जितना बाबा की परवरिश लेते हैं, तो उतना हमें पक्का होता है कि ये हमारा माता पिता है, सच्चा सच्चा और अविनाशी माता पिता। बाबा हम बच्चों की पालना करता है, परंतु एक कंडीशन जरूर रखता है कि पहले आपको सब कुछ मेरे को तेरे में परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक हमने मेरे को तेरे में परिवर्तन नहीं किया है, तब तक उसके पालना के हम पात्र नहीं बन सकते। जब हम उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं बुद्धि से, भले कहां भी रहो, प्रवृत्ति में रहो या सेवा के फील्ड में रहो, अगर हम दिल से उसके आगे सरेंडर हैं, तो बाबा हमारी परवरिश करने के लिए बांधा हुआ है, हमारी संभाल करने के लिए बांधा हुआ। परंतु समझो हम सेवा स्थान पर भी रहते हैं, अगर हम उसके आगे सरेंडर नहीं होते हैं, मर्जीवा नहीं बनते हैं, तो वो हमारी परवरिश नहीं करता। इसीलिए पहले पहले तो हमें पूरा पूरा पुरानी दुनिया से मरना है, मर करके उसका बनना है। ऐसा नहीं अधूरा मरे। हम सभी ने साकार बाबा को देखा, कैसा एक सेकंड में बाबा को निश्चय हुआ और बाबा पूरा पूरा उसके आगे सरेंडर हो गए। सोचा भी नहीं बाबा ने कि बच्चों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, कुछ भी विचार नहीं किया, परंतु एकदम बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, ये पाठ उसने पक्का कर लिया। इसको कहा जाता है झाटकू मरना। जो देवियों के ऊपर बलि चढ़ाते हैं ना, पहले तो मनुष्य की बलि चढ़ती थी, अभी बेचारे बकरों की बलि चढ़ाते। तो बलि चढ़ाते हैं तो कौन सी बलि कहते हैं, देवी स्वीकार करती है, जो झाटकू झाटकू बलि चढ़ती है वो ही स्वीकार करती है। उसको उन्होंने समझो मारने के लिए उसके ऊपर गंजर या जो भी कुछ मारा, तलवार मारी, तो उसी समय अगर वो मरा तो वो बलि को स्वीकार करती है, अगर एक धक से नहीं मरा तो वो स्वीकार नहीं करती, फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और जो बलि एक धक से उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसको महाप्रसाद करके सबको बांटते। तो हमारी भी वही हालत है, ये हमारी यादगार अवस्था। हमको जब निश्चय हो जाता है बाबा का कि ये हमारा बाबा है और हम इसके बच्चे हैं, मैं समझती हूँ सभी जरा आंखें खोल के बैठेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम स्कूल में बैठे हुए हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसको थोड़ी नींद आती हो ना तो पानी पी के आओ, जरा चक्कर मार के आओ जाओ। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं, आपको जब भी बोर हो ना तो मेरे को जरा बताना, तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। क्योंकि बाबा को कभी क्लास में कोई सोवे, कोई उवासी भी देवे, तो कभी साकार बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा कहता था बच्चे पढ़ाई ये कमाई, कमाई के समय समझो कोई व्यापारी है दुकान पर बैठा है और वो झुटके खा रहा है या उबासियां दे रहा है, तो ग्राहक आके उसका सारा टप्पर ही उठा करके ले जाए। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत अलर्ट होना सिखाया, क्योंकि हम सोल्जर भी है, रूहानी योद्धे भी हैं, योद्धा माना ही एकदम अलर्ट, और स्टूडेंट माना भी अलर्ट, और हमारी चढ़ाई भी है, हम यात्रु भी हैं। अगर हम चढ़ते चढ़ते झुटका मार देंगे तो ऊपर से सीधा नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने ये सब कुछ युक्तियां हम बच्चों को बताई है खुद को चुस्त बनाने के लिए। आप लोगों ने हिस्ट्री हाल में आप जाके देखो, वहां पर फोटो लगे हुए हैं, वो दादियों को सबको फ्रॉक और वो पहना हुआ है, निकर और फ्रॉक पहन करके, वो टी शर्ट और फ्रॉक पहन करके ड्रिल कर रहे हैं। बाबा ड्रिल कराता था, खास क्लिफ्टन पर ले जाकर कराती, क्लिफ्टन मान सीश्योर के ऊपर, कि बच्चों को चुस्ती आवे उनके अंदर, हम उनको पक्का हो जावे कि हम स्टूडेंट है, हमारी स्टूडेंट लाइफ है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट भी कोई कच्चे स्टूडेंट थोड़ी, हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ वाले, इसीलिए बड़े चुस्ती से बैठिए, नहीं तो मेरे को झुटका आ जाएगा। क्योंकि ये बीमारी जो है ना, ये छूत की बीमारी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लग। तो बात ये चल रही थी कि साकार बाबा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को बताया कि झाटकू मरना किसको कहा जाता है। बाबा हमेशा कहते थे जिसका हाथ ऐसा, पहला पुरुष को पहुंचे। हाथ ऐसा माना जो सर्वस्व त्याग करने में ऐसे है, जिनके हाथ ऐसे नहीं, देने वाले हाथ नहीं, देने वाले हाथ, तो इसीलिए पहला पुरुषार्थ पहला नंबर उसको ही मिलता है, ये हम सभी ने प्रैक्टिकल में देखा। और हमारे पढ़ाई का सबका यही है तरीका और लक्ष्य, शॉर्टकट फॉलो फादर करना और कुछ भी नहीं। तो बाबा ये हमारा बाबा है और हम उसके बच्चे हैं, तो मेरे को अगर बाप और बच्चे और माँ की अनुभूति उससे करनी है तो उसके लिए मुझे उसका आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। जितना जितना हम आज्ञाकारी बनते हैं उतना उतना बाबा की परवरिश हम बच्चों को मिलती है। जब हम मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देते हैं तो वो हमारी बहुत अच्छी तरह से परवरिश करता है। आप लोगों को अव्यक्त बाबा की मुरली की पॉइंट याद होगी। बाबा ने एक बारी बताया कि जब पूरा तुम मेरे ऊपर समर्पण हो जाते हैं तो मैं बांधा हुआ हूं तुमको संभालने के लिए। भले तुम प्रवृत्ति में रहते हो परंतु मेरी तुमको गारंटी है, तुम कभी भूख नहीं मर सकते हो। तुम तो भूख नहीं मरेगे, तुम्हारे बच्चे भी भूख नहीं मरेंगे, यहां तक बाबा तुम्हारी संभाल करेगा, परंतु पहले तुमको मरना पड़ेगा, बाद में दूसरी बात होगी। तो इसीलिए बाबा का आज्ञाकारी वफादार और फरमाबरदार बनने की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो जितना जितना हम बाबा के आज्ञाकारी बन के चलते हैं, बाबा की जो आज्ञाएं हैं उसको हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, उतना उतना बाबा का हम प्यार पा सकते, बाबा की परवरिश के हम लायक बन सकते, पात्र बन सकते। तो हमारा बाबा के साथ दिल का प्यार होना चाहिए। बाबा ने बताया है दो प्रकार का प्यार होता है, एक है दिमागी प्यार और दूसरा है दिल का प्यार। आप दिलाराम का मंदिर देखेंगे, दिलाराम का दिल वाला मंदिर दिलाराम का मंदिर है ना, दिमाग का राम का मंदिर नहीं है। दिमाग से सिर्फ थ्योरी मात्र प्यार करना कि वो मेरा बाप है और मैं उसका बच्चा हूं, तो उसका प्यार नहीं प्राप्त कर सकते। जब हमारा दिल का प्यार है, बाबा ये हम बच्चों को सिखाता है कि आप सभी के साथ स्नेह जरूर करो, आप सभी के साथ तोड़ जरूर निभाओ, परंतु दिल का प्यार सिर्फ एक ही दिल भर के साथ होना चाहिए। तो जब हमारी ये स्थिति होती है तो बाबा से हमें ये अनुभूति होती है कि वो कैसा माता पिता बनकर के हमें गोदी में लेके जाता है, हमें वो कैसा संभालता है, इसका अनुभव हमें होता है साकार बाबा। जब भी हम देखते थे हमारे पास बॉम्बे में जब ये आपू साम आते थे और हम बाबा से मिलने को आते थे तो बाबा के पास लेके आते थे, जब भी लाए गए बाबा कभी मुख में नहीं डालता था, क्योंकि हम लोग तो पहुंचते थे उस समय तो ट्रेनें वगैरह तो काफी तकलीफ होती थी ना, जल्दी तो नहीं पहुंच सकते थे, दोपहर के समय आते थे तो हम बाबा को भोग तो लग जाता था उस समय। फिर जब भी बाबा भोजन खाने पर आते हम लोग कहते थे बाबा आप भोजन के साथ एक फाड़ तो खाओ, बाबा कहता था नहीं, जब भी तक शिव बाबा को भोग नहीं लगाए तब तक मैं नया फल मुख में नहीं डालू। अभी शिव बाबा उसी के तन में आता है, परंतु बाबा का इतना गहरा कनेक्शन निराकार के साथ था, जब भी तक बाबा को भोग किसी उस चीज का नहीं लगेगा, नई चीज का, तभी तक बाबा कभी स्वीकार नहीं करते। तो हमें चेक करना है हमारा इतना बाबा के साथ गहरा कनेक्शन है, हमारा इतना प्यार है बाबा के साथ। अगर हमारा दिल का बाबा के साथ प्यार है तो दिल से दिल मिलती है। कभी कोई कोई पूछता था बाबा आप हमको याद करते हो, बाबा कहता था मिठड़ा घुर तो घुराई, मतलब तुम मेरे को याद करो तो मैं तुमको याद करूं, याद से याद मिलती। तो जितना जितना हम बाबा को याद करते उतना बाबा भी हमें याद करता है, उतनी बाबा की खींच हमको बढ़ती जाती है, उतनी बाबा के पालना के हम अधिकारी बनते जाते। तो बाबा की आशीर्वाद ये भी कितनी बड़ी पालना है कि ये मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, अगर आज्ञाओं पर चले गए तो आप लोग तो प्रवृत्ति में रहते, आपको मालूम है कौन सा बच्चा अच्छा लगता है। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसके ऊपर प्यार होता है माता पिता का। तो हम जितना जितना बाबा के आज्ञाओं पर चलते हैं उतना उतना बाबा के प्यार के पात्र बनते हैं, और बाबा का प्यार पाने के बाद इस दुनिया का सारा जो प्यार है वो प्यार नहीं, वो मार लगती। सच्चा प्यार क्या है इसकी अनुभूति होती है। तो हमारा जो गहरा संबंध है बाबा के साथ, वो हमारा अविनाशी पिता है, वो हमारी माता है, इसकी अनुभूति हम हमेशा कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं वो हमारा सुप्रीम टीचर। जब भी वो हमारा टीचर है और हम उसके गॉडली स्टूडेंट है, हमको कौन पढ़ाता है, कहाँ से आके पढ़ाता है। आज कोई टीचर हम खुद पढ़ते थे तभी कोई टीचर दूर से आता था, किसी गांव से आता है, अरे हमारा टीचर ना बहुत दूर से आता है, एक घंटा लगता है उसको आने को, कितना दूर रहता है तो भी रोज आता है। और हमारा बाबा देखो कितने दूर से आता है, परम धाम से आकर के नहीं आने वाला, हम बच्चों के लिए आता है और हमको आके पढ़ाता है। तो हमको अगर इस बात की समझ है, इस बात की जानकारी है, हमको ये निश्चय है कि बाबा इतने दूर से आकर के पढ़ाई पढ़ाता है। हम देखते थे बाबा को बच्चों के पढ़ाई का कितना कदर रहता था। कभी रथ ठीक नहीं हुए तो बाबा अमृत वेले उठ के मुरली लिख करके देते थे और वो फिर क्लास को सुनाती थी मम्मा बैठकर। बच्चों की पढ़ाई मिस नहीं हुए इस बात का इतना ध्यान बाबा को रहता था। वो हमारा टीचर है और मैं उसका स्टूडेंट हूँ, तो मैं इतना पंचुअल हूँ, मैं इतना एक्यूरेट हूँ, मेरे को कैसा अनुभव होगा इस संबंध का कि वो मेरा टीचर है और मैं उसका स्टूडेंट हूँ। मेरा जब पढ़ाई के ऊपर ध्यान होगा, जितना हमारा बाबा के साथ प्यार है उतना ही हमारा बाबा की मुरली के साथ भी प्यार होना चाहिए। मुरली हमारा प्राण है, मुरली हमारा जीवदान। हम लोग जब पार्टी लेके आते थे मधुबन में और शाम को बाबा मिलते थे हाल में आके, छोटे हाल में, छोटा ही हाल था तभी, छोटे हाल में नीचे हिस्ट्री हाल में आके मिलते थे बच्चों से। बाबा पहले पूछता था, बच्चे आज की मुरली सुनी? अब आज की मुरली हम कहाँ से सुनेंगे, हम तो ट्रेन में होते थे और उस समय तुम्हारा ये इंटरनेट और ये कुछ था थोड़ा ही जो पहले से हमको मुरलियां मिल जावे। वो तो बाबा जो सुनाएगा वो हमारे को 8 दिन के बाद मिलेगा, ऐसा होता था। तो हम बोलते थे नहीं बाबा हमने आज नहीं सुनी, हम तो ट्रेन में थे। बाबा बोलता था जाओ पहले मुरली सुनो, पीछे बाबा मिलेगा। फिर बाबा किसी ना किसी टीचर को बोलता था जिसने जो वहां रहती थी कि इनको पहले मुरली सुनाओ। बाबा चला जाता था आके हाल में से। कितना मतलब बाबा को पढ़ाई का, बच्चों का कितना ध्यान, फिर वो आके मुरली सुनाएगी तभी बाबा हमारे से मिले। और यज्ञ में अगर कोई बड़े से बड़ी भूल करता था उसको सजा मिलती थी, उस दिन बाबा की मुरली वो नहीं सुन सकता, मिस। तो बाहर पैसेज में खड़े होके बाबा की मुरली, बाबा मुरली चलाता था, बाहर पैसेज में खड़े रहेंगे तो भी पहले पहरे वाले खड़े नहीं करते थे उनको, उनको बोलते थे जाओ। तो बेचारा सारा दिन फिर भोजन भी नहीं खाता था। उसको बोलेगे भाई भोजन तो खाओ, बोलेगा नहीं नहीं आज तो मैंने आत्मा को भोजन नहीं खिलाया है तो मैं शरीर का भोजन नहीं खाऊंगा आज। बड़ी भूल करने के बाद वो सजा मिलती थी, एक कड़ी सजा। अभी खुद को देखो हम कहां तक निभाते हैं उसके साथ ये रिश्ता। सचमुच मैंने उसको अपना अगर टीचर समझा है, मैं उसका स्टूडेंट हूं, तो वो टीचर जो मेरे को होमवर्क देता है वो मैं कहां तक करता हूं। आप लोगों को याद होगा अव्यक्त बाप दादा जब आते थे 15-15 दिन के बाद, फिर हम लोगों को होमवर्क दे के जाते थे कि 15 दिन के बाद बाबा आएगा और तुम्हारे से ये पूछेगा। कभी क्रोध मुक्त का देते थे, हाँ कभी दूसरा देते थे अशरीरी बनने का कोई ना कोई होमवर्क देते। फिर जिनका पढ़ाई के ऊपर ध्यान है, जो सचमुच सुप्रीम टीचर को अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो होमवर्क वो करते थे। और दूसरे जो है वो तो भूल जाते थे। फिर 15 दिन के बाद वापस बाबा आते थे तो पूछते नहीं थे। अभी जिन्होंने किया हुआ होता था वो तो तैयार रहते थे, परंतु जिन्होंने नहीं किया हुआ होता था वो बड़े खुश होते थे, देखा बाबा भूल गया। अभी जो सर्वज्ञ है वो कभी भूल सकता है क्या? तो खुश होते थे, बाबा बोलता है पर बाबा को भूल जाता है बोलने के बाद। हमेशा ऐसा होता था। फिर एक दिन अव्यक्त बाप दादा ने इसके ऊपर मुरली चलाई। बाबा ने कहा, हमेशा बाबा तुम बच्चों को, बाप दादा तुम बच्चों को होमवर्क दे के जाता है और फिर कह के जाता है मैं 15 दिन के बाद तुम्हारे से पूछूंगा, परंतु बाबा तुम्हारे से पूछता नहीं। बहुत बच्चे ऐसे समझते हैं, जो अलबेले बच्चे वो समझते हैं कि बाबा भूल गया इसलिए बाबा ने नहीं पूछा। बाबा बुद्धिमानों का बुद्धिमान है, वो भूल नहीं सकता। बाबा इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि बाबा बच्चों की इंसल्ट करना नहीं चाहता है, क्योंकि बाबा को मालूम है मेजॉरिटी बच्चों ने होमवर्क नहीं किया। जब बाबा पूछेगा तो तुम्हारी मुंडी नीचे हो जाएगी, बाबा कोई अच्छा नहीं लगे। देखो बाबा कौन सी दृष्टि से देखता है हमारे को, बाबा हमको कौन सी नजर से देखता है, हमें खुद की पहचान नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। तो वो हमारा टीचर है, तो हमारा काम है वो जो हमको बोलता है उसको फौरन करना, क्योंकि फौरन करते हैं हम। बाबा ने जो हमको होमवर्क दिया अगर हम तुरंत करते हैं तो आज्ञाकारी का सर्टिफिकेट मिलता है, फौरन करते हैं तो बाबा की मदद मिलती है, और फौरन करते हैं तो हमारा भी उमंग उत्साह रहता है। परंतु थोड़े समय के बाद अगर करते हैं, ये तो जैसा बाबा ने कहा ये तो बासी खाना हो गया। बासी खाना खाओ और ताजा गर्म खाना खाओ, कितना अंतर होता है। उसमें पेट भरेगा तुम्हारा पर विटामिन नहीं मिलेगा, ताकत नहीं आएगी। तो वैसा ही होता है, तुम बाद में अगर करते हो तो उसका जो फायदा होना चाहिए वो तुमको नहीं मिलता। इसीलिए बाबा हमारा टीचर है, सुप्रीम टीचर है, और हम उसके स्टूडेंट हैं। इस बात को बुद्धि में रखते हो हमको उसके साथ निभाना है। वो हमारे से निभा रहा है पर हम उसके साथ निभा रहे हैं। हमको अनुभूति कहां से होगी कि वो हमारा टीचर है? हम उसका कहना ही नहीं मानेंगे तो टीचर कहेगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो टीचर कहेगा, और हम स्टूडेंट कहेगा। अभी जैसा देखो अचानक कोरोना का इतना हल्ला हुआ ना एकदम, जैसा हल्ला बोल दिया उसने, अरे ये क्या अचानक ही हो गया, ये ऐसा कैसा हो गया। अचानक कुछ भी नहीं हुआ, बाबा ने पहले से बता दिया है सारा, पर पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है। जो बाबा ने पहले से बताया, बच्चे ऐसी ऐसी बीमारियां आएगी उसकी कोई दवाइयां नहीं होगी, ऐसी अचानक बीमारियां आएगी जो फटाफट लोग मरेंगे, कोई किसी को उठाने वाला नहीं होगा, सब कुछ बताया हुआ है। परंतु जब मेरा ध्यान ही नहीं है पढ़ाई की तरफ तो मेरे को तो लगेगा ना अचानक हुआ, मैंने तैयारी नहीं किया उसके लिए कुछ। परंतु जिन्होंने पढ़ाई के ऊपर अटेंशन दिया, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने तो अपनी तैयारी किया ना अंदर से कि ये तो होने वाला है, उनको कोई आश्चर्य नहीं लगा, वो घबराए नहीं। परंतु जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो तो जरूर घबराए। तो अनुभूति, वो मेरा टीचर है, मैं उसका स्टूडेंट हूं, इसकी अनुभूति मुझे करनी है ना। वो तो है परंतु मैं उसका स्टूडेंट हूं कैसे? बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, जितना जितना ज्ञान का सिमरण करेंगे, जितना जितना मनन करेंगे, जितना जितना चिंतन करेंगे, उतना उतना ये ज्ञान तुम्हारे को हजम होता जाएगा, इससे तुम शक्तिशाली बनते जाएंगे। उससे तुम्हारे को सुख की अनुभूति होगी। ये किसको करना है? मुझे करना है ना? इसमें नंबर बन जाते। तो इसीलिए वो हमारा टीचर है, हम उसके गार्डली स्टूडेंट है। जब तक जीना है तब तक हमको पढ़ना है, अंत तक पढ़ना है। हमें स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी लगती थी पहले से ही, हम इसी पॉइंट के ऊपर बाबा के बन गए कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ऐसी और कहां पढ़ाई नहीं मिलती है, जब तक जियो तब तक पढ़ते रहो। और फिर पढ़ना भी है, औरों को पढ़ाना भी है खुद को सुधारने के लिए, क्योंकि औरों को पढ़ाते हैं तो हम जल्दी सुधर जाते हैं, हमारा अटेंशन रहता है अपनी तरफ। उसके बाद हम देखते हैं वो हमारा सतगुरु है। कहा जाता है सतगुरु के आ गया सिर माथे पर, मेरे को कैसी अनुभूति होगी, वो मेरा सतगुरु, मेरे को तभी उसकी अनुभूति होगी कि उसका जो फरमान है उसको हमने जो वचन दिया हुआ है सतगुरु को कि हम जब तक जीते रहेंगे तब तक अपने जीवन को पवित्र और योगी बना करके चले। मनसा वाचा कर्मणा, हमने पवित्रता का उसको वचन दिया है, उसको हम निभाते हैं। अगर उसको निभाते हैं तो सतगुरु की हमारे ऊपर कृपा होती, सतगुरु हमारे ऊपर हमेशा मेहरबान रहता है, सतगुरु हमें वरदान देता है, हमें अनुभव होता है कि वो हमें वरदान दे रहा है। परंतु अगर हम उसके इन आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उसके फरमान का पालन नहीं करते हैं, सतगुरु का फरमान है अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे, उसका फरमान है, उसमें कुछ वो श्राप नहीं दे रहा है पर फरमान कर रहा है तुम्हारे को सबको सुख देना। आप अलग अलग निकालो, बाबा की आज्ञाएं क्या है, टीचर की सिक्ख्याएं क्या है, सतगुरु के फरमान क्या है, आपको खुद को ही मिलेगा। और खुद को चेक करना सहज रहेगा कि हम उस रिश्ते में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इसीलिए हमारे को वो सतगुरु है तो उसके फरमानों पर चलना है, फरमानबरदार बनना है, तो उसकी आशीर्वाद हमारे को सदैव अनुभव होती रहेगी। हम उसके छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं, उसकी आशीर्वाद हमारे को, वो हमारा साजन है। हम सब आत्माएं, मेल या फीमेल, हम सब उसकी सजनियां हैं। वो साजन हमारे से क्या चाहता है? वो हमारे से यही चाहता है कि हम एक व्रता बने। जैसी पतिव्रता नारी होती है, पतिव्रता, पिताव्रता, परमात्म व्रता, सदैव एक ही हमारी बुद्धि में रहे और कहां कोई कुछ भी बुद्धि में नहीं आ, ना वस्तु, ना पदार्थ, ना व्यक्ति। आप सीता की जीवन कहानी देखो, वो पतिव्रता नारी थी ना सीता, सीता की पतिव्रता नारी तो उसके फेमस है, हम लोगों की यादगार है। परंतु उसको क्यों जाना पड़ा रावण की शोक वाटिका में? क्या भूल किया उसने? हाँ, वो तो बाद में किया, उसके पहले और भी कुछ किया उसने, उसको मालूम ही नहीं पड़ा, उसने कभी चेक ही नहीं किया अपने को। हाँ, मोह उसको नहीं था, उसको सोने का आकर्षण, लोभ होता है, वो मोह नहीं होता। सोनी हिरण के पीछे उसने क्या किया? राम को उसके पीछे भगाया, लक्ष्मण को उसके पीछे भगाया। राम ने भी देखा कि ये राम राम तो करती है पर इसको मेरे से ज्यादा तो सोने से प्यार है, तू सोनी दुनिया में ही जा भाग। इसलिए उसको सोनी लंका में जाना पड़ा। तो हमें भी खुद को चेक करना है कि सचमुच मैं सच्ची सच्ची सीता हूं, सच्ची सच्ची मैं पतिव्रता या परमात्म व्रता हूं, या मुझे कोई ना कोई आकर्षण है। अनुभूति कैसे होगी उसके द्वारा मुझे, मुझे वस्तु का आकर्षण, पद का आकर्षण, व्यक्ति का आकर्षण, विनाशी प्राप्तियों का आकर्षण। फिर कहेंगे बाबा से अनुभूति नहीं होती है, क्यों होगी अनुभूति? आप उसको भोलानाथ कहते हैं पर वो ऐसा भोला नहीं है, वो बहुत बड़ा पक्का सौदागर है। हम जितना करते हैं उतना ही देता है वो। अगर मुझे उससे सर्व संबंधों की अनुभूति करनी है तो मुझे उसके साथ सर्व संबंध निभाने। इसलिए बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए अपने में कि मुझे कौन सा आकर्षण है। ऐसा नहीं मुझे सोनी दुनिया में जाना पड़े। लंका है ना, ये सारी दुनिया ही लंका है। उसके बाद वो मेरा खुदा दोस्त, इस दुनिया में जो दोस्त है उसका क्या गायन करते, दोस्त दोस्त नहीं रहा। हाँ, आजकल सब दोस्त क्या है, मतलब भी है, स्वार्थी है, परंतु खुदा दोस्त ये निस्वार्थ। दोस्त का रिश्ता बड़ा ऊंचा रिश्ता होता है। दिल की बात और किसी को नहीं बताएंगे, पर दोस्त होगा या सहेली होगी उसको बताती। मम्मा हमेशा कहती थी आपस में एक दो की सखियां जरूर बनो पर सहेलियां नहीं बनो। सहेलियां फालतू बात भी करती हैं, सखियां जो होगी वो आत्म उन्नति की बात करें। तो बाबा जो मेरा खुदा दोस्त है, मेरी कोई भी दिल की बात है मुझे सच्चे दिल से उसको बतानी। जब हम उस सच्चे पातशाह के साथ सच्चे रहते हैं तो वो मुझे हर हालत में मदद करता है। जिन्होंने खुदा दोस्त से बहुत गहरा रिश्ता निभाया है वो सदा हल्के रहते हैं, कभी भी उनका मन भारी नहीं होता। उनको चलने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं होती। वो कहता है मुझे तुम दिल से याद करो, ये हजूर तुरंत हाजिर हो जाएगा, परंतु दिल से याद करना पड़ेगा। दिमाग से बाबा बाबा कहने से कुछ नहीं होगा। तो हमारा दिल से अगर उससे प्यार है, दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, हमारे अंदर सच्चाई और सफाई है, तो खुदा दोस्त हमेशा मेहरबान है। हमेशा वो हमारे साथ में, हमको छोड़ता नहीं हो कभी। बाबा कहता बच्चे मेरे को छोड़ के चले जाते, मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं कि क्यों जा रहे हैं, आ जाओ वापस। बाबा सदैव हमको मदद करने के लिए तैयार बैठा है। उसकी मदद लेने के लिए हमें खुद की तैयारी करने की जरूरत। परंतु वो मदद उसको करता है जो उसको मदद करता है, ये ध्यान में रखना। हम उसको मदद करेंगे वो हमारे को मदद करेगा, अगर हम उसको मदद नहीं करते तो वो हमारे को मदद नहीं करता है। आप उसके कार्य में हमेशा मदद करो, आपको मदद जरूर मिलेगी। परंतु आप उससे मदद मांगते रहो तो मदद मांगने से नहीं मिलती। आज किसी के भी काम में आएंगे तो सामने वाला जरूर हमारे काम में आता है। अगर हम उसके काम में नहीं आते तो वो क्यों हमारे काम में आएगा, आ ही नहीं सकता है। आज ब्रह्मा बाबा को उसने क्यों इतना ऊंचा पद दिया, वो सदैव उसके कार्य में बिजी रहा, सब कुछ उसने उसके पीछे न्योछावर कर दिया। हमें भी एक नहीं परंतु अनेक अनुभूतियां होती है, हम जब बाबा के कार्य में लगे रहते हैं, बाबा के साथ लगे रहते हैं, बाबा हमारे साथ लगा रहे। बहुत उदाहरण है, एक बात मैं आपको सुनाती, बाबा देखो हम बाबा के काम में आते तो बाबा हमारे काम में क्या साथ। मेरा अनुभव, एक बारी हमारे को कार खरीद करनी थी, तो पहली कार हमारी पुरानी हो गई थी तो दूसरी लेनी थी, तो हमने भाइयों को बोला आप कैटलॉग लेके आओ तो देखते कौन सी कार लेते। लेके आए, मैं उस समय यहां आई, मधुबन में आई थी, मधुबन में आई थी तो मधुबन में हमारी मीटिंग थी तो बात चल रही थी। हमारे पास यहां जो बसेस थी वो काफी पुरानी हो गई थी, तो कहा कि अभी अपने को बसेस लेनी पड़ेगी, तो मैंने कहा ठीक है अच्छा हम लेके भेजते, बस ले लेना एक बस। यहां मैंने बोला तो मैं फिर वापस गई बॉम्बे, गई तो भाई लोग कैटलॉग ले आए थे इसका कार का, मेरे को बताया, बोला देखो कौन सी लेनी। मैं बोला अभी नहीं लेनी है क्योंकि मधुबन में बस की जरूरत है, तो वहां पहले बस दे गए। उन्होंने कहा ठीक है आप जैसा समझो वैसा। हम बोला काम तो चल रहा है तो क्या जरूरत क्या है ऐसी। अब मैं भी भूल गई वो बोल करके, वो भी सब अपने अपने काम में लग गए। दूसरे दिन सवेरे अमृत वेले मैं बैठ के मुरली पढ़ रही थी, क्लास का समय, क्लास के समय के पहले मैं मुरली पढ़ रही थी, तो इतने में एक माता आई। माता ने कहा दीदी मेरे को ना आपको एक कार लेके देनी है। मैं बोला मेरे को, उसको कुछ भी मालूम, किसी को भी मालूम नहीं था, दो चार भाइयों को मालूम था कार लेने की और मुझे मालूम था और किसी को नहीं मालूम। मैं बोला क्यों, तुम्हारे को क्यों संकल्प आया, क्योंकि कभी इतना तो उसने किया नहीं था, तो मैं बोला तेरे को क्यों संकल्प आया। तो बोला आज मैं अमृत वेले बैठी थी तो बाबा मेरे सामने आया और बाबा ने मेरे को बोला तुम इसको गाड़ी लेके दो। मैं तो एकदम चुप हो गई, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने क्लास पूरा हुआ तो मैंने जानकी दादी को फोन किया, मैंने कहा, प्रकाश मंड दादी नहीं थी तभी, जानकी दादी थी दादी के जाने के, तो मैंने जानकी दादी को मधुबन में फोन किया। मैं बोला दादी ऐसा ऐसा हुआ। दादी ने कहा देखो तुमने मधुबन का ध्यान रखा तो मधुबन के बाबा ने तेरा ध्यान रखा। और फिर यही हुआ, जिस दिन यहां बस की ओपनिंग हुई उसी दिन हमारे पास कार की भी ओपनिंग। तो देखो हम जब भी बाबा का ध्यान रखते हैं, बाबा का ख्याल रखते हैं, तो बाबा, ये तो एक मिसाल मैंने आपको बताया, ऐसे अनेक मिसाल, बाबा हमारा ख्याल रखता है, परंतु हमारा इतना बाबा के साथ गहरा संबंध चाहिए, हमें वो अनुभूतियां करनी है तो हमारा गहरा संबंध चाहिए, तभी हम उससे ये सब अनुभूतियां कर सकते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्व संबंध तुम मेरे से लगाओ और मेरे को यूज करना सीख जाओ। बाबा को यूज करने की अक्ल चाहिए। आज देखो किसी को कोई काम निकालना होता है, किसी ऑफिसर से या कहां गवर्नमेंट के इसमें से, तो जाकर के बताएंगे फलाना मिनिस्टर है ना, मेरा ये रिश्तेदार है, मेरा ये दोस्त है, फलाना है टीरा है, कहां कहां की पहचान निकाल के, वो मेरा गांव वाला है, ये है वो, उसकी पहचान निकाल करके अपना काम करा के आते। और यहां तो हमारा बाप सर्वशक्तिवान है, सारी सृष्टि का रचयिता है, तो बाबा कहता है तुम मेरे को यूज क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे को जो भी कार्य कराने तुम मेरे को यूज करना सीख जाओ। तो जितना जितना हम बाबा को यूज करेंगे उतना उतना बाबा हमको मदद करेगी, हम यूज ही नहीं करेंगे तो मदद क्यों करेगा। तो इसीलिए बाबा की मदद लेने की भी अक्ल हमारे में चाहिए कि हम बाबा की कैसे मदद लेवे। उसके लिए सिर्फ सच्ची दिल हो, साफ दिल हो और बाबा की आज्ञाओं पर चलने की हमारे में वो ताकत हो। जब ये हम अपने साथ प्रण कर लेते हैं, बाबा साकार बाबा बोलते थे, धरत पड़िए धर्म न छोड़ी। धरनी के ऊपर गिरना भी पड़ेगा तो भी हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। धर्म माना धारणाएं, बाबा ने जो धारणाएं हमारे को दी है वो हम कभी भी तोड़ेंगे नहीं, कुछ भी होने दो। तो जब इतना हम प्रण करके बाबा के साथ चलते हैं तभी हमारे को उसका रिस्पांस भी इतना जोरदार मिलता है। परंतु जब तक हम ये प्रण हमने नहीं किया हुआ है तब तक हमारे को मदद भी हम जितना करते उतना हमको सामने से मिलता, स्थूल या सूक्ष्म हम दोनों प्रकार का। आज बाबा जो हमारी परवरिश कर रहा है बच्चों की संगम युग पर, हम खुद भी देखते, अभी इस समय पर लॉकडाउन था, दो बरस के लिए करीबन लॉकडाउन चला, परंतु मैं नहीं समझती हूँ कि बाबा के किसी बच्चे को कभी भूख सोना पड़ा, भूख रहना पड़ा, ऐसा तो नहीं। बाबा बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। तो जब बाबा हमारा इतना ध्यान रखता है तो हमें उस बाबा का कितना ध्यान रखना चाहिए, बाबा की हमें कितनी शुक्रिया माननी चाहिए, उसकी कितनी आज्ञाओं पर चल के आज्ञाकारी और वफादार बनना चाहिए। उसको ये नहीं अच्छा लगता है कि हम उसके बिगड़ और किसी को याद करें, इसीलिए सदैव वो यही कहता है तुम मेरे को याद करो। वो भी किसके लिए, उसको कुछ फायदा नहीं, हमारे को फायदा है। हम जितना जितना उसको याद करते हैं उतना उतना हमें फायदा होता। तो इसीलिए वो बोलता है सदैव तुम मेरी याद में रहो और मेरे साथ सर्व संबंध लगा के रखो, फिर देखो तुम्हें कितनी प्राप्तियां होती है। स्वतः ही प्राप्तियां होती रहेगी, तुम्हारे को मेहनत करने की कभी भी जरूरत नहीं। और हमारा ये अनुभव है इतने बरसों का, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, परंतु मोहब्बत में सब कुछ प्राप्ति होती है तो मेहनत क्यों करें। मेहनत तो मजदूर करते हैं, हम तो उसके वारस बच्चे हैं, हमारे को मेहनत करने की क्या जरूरत, आवश्यकता ही नहीं है कुछ। तो इसीलिए अपने ऊपर है, सर्व संबंधों का रस कैसे लेने का है ये हमारे ऊपर है। बाबा को हमारे से क्या चाहिए, बाबा को दो बातें चाहिए, एक तो चाहिए उसको अव्यभिचारी याद और दूसरी चाहिए हमारी पवित्रता। जितनी जितनी पवित्रता है और अव्यभिचारी याद है, एक के साथ हमारा बुद्धि का योग है, तो वो दिलबर हमारे ऊपर सदैव मेहरबान है। ओम शांति।